نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت کی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا وہ کلام جو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے کے انکار پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بات سنی کہ اب یہ اور زیادہ جنت میں نہیں رہ سکے گا اور اس کی مہلت جو ہے جنت میں رہنے کی وہ ختم ہو گئی تو اس نے اس بات کو دلیل بناتے ہوئے کہ آدم علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ میرے لیے جنت سے نکلنے کا سبب بنا حالانکہ یہ بات نہیں تھی ابلیس کے جنت میں نکلنے کا سبب اس کا اللہ کے حکم کو نہ ماننا تھا لیکن شیطان جیسے خود اس دھوکے کا شکار ہوا اسی طرح آج دوسرے انسانوں کو بھی کرتا ہے اور وہ کیا کہ اپنی محرومیوں اور اپنی ناکامیوں کی وجہ دوسروں کو گردانتا ہے تو لہٰذا کہنے لگا قال فبما اغویتنی اس نے کہا کس نے کہا شیطان نے کہا بس اس کی وجہ سے تو نے مجھ کو بہکا دیا اغوا کر لیا لفظ آپ دیکھیں گے اغویتنی تو نے اس انسان کی وجہ سے مجھے اغوا کر دیا مراد کیا ہے کہ اس جنت سے نکال دیا جہاں میں بہت عرصے سے تھا لہٰذا اب میں انتقام لوں گا کیسے لأقعدن یہ تھوڑی سی جو آواز آئے گی نا یہ ریکارڈنگ میں آئے گی تو کوشش کریں تھوڑی سی
بچوں کی یاد کریں
یہ جو بلاگس کھیل رہے ہیں ان کو کوئی سافٹ چیز دے دیں کوئی ایسی چیز دے دیں جس کی آواز نہ ہو اور ہم سبھی اپنے سیل فون بند کر لیں تو میرا ہلو ایک اچھا ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کیونکہ بیچ میں سلسلہ ٹوٹتا ہے تو اس سے پھر بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فبما اغویتنی شیطان نے کہا بس اس کی وجہ سے تو نے مجھ کو اغوا کیا اب میں بدلہ کیسے لوں گا لأقعدن لهم صراطك المستقيم البتہ ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں یہ چیلنج تھا کہ چونکہ میں جنت سے نکالا گیا تو وہ صراط مستقیم جو جنت تک لے کے جاتا ہے اب میں اس کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا پھر کیا کروں گا ثم لآتينهم من بين ايديهم پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا یعنی دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور کیا وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے آؤں گا مراد کیا ہے کہ ان کی آخرت کو پیچھے ڈال دوں گا ان کی لیسٹ پرائرٹی آخرت کو بنا دوں گا اور کیا وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں سے آؤں گا یعنی ان کی رائٹ سائڈ سے آؤں گا مطلب کیا ہے کہ نیکیاں کرنا مشکل کر دوں گا اور وان شما الیہم اور ان کے بائیں سائڈ سے ان کی لیفٹ سائڈ سے آؤں گا مراد کیا ہے کہ ان کے لیے گناہوں کو خوبصورت کر دوں گا اس کے علاوہ اور بھی تفاسیر ہیں ان ساری ڈائریکشنز کی لیکن یہ وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے آج کے ٹاپک سے ہے پھر کیا ہوگا میرے اس بہکانے کا آخری انجام یا اثر کیا دکھے گا کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین پھر میں ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤں گا یعنی میرے ان پھندوں میں یہ آ جائیں گے اور اس سیدھے راستے پہ چلنے کی بجائے میری باتوں پہ آنے لگیں گے تو یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ ہم آج کی اس نشست میں دیکھیں گے کہ شیطان انسان کے راستوں میں کیسے بیٹھتا ہے اور کیا طریقے ہیں جس کی وجہ سے شیطان انسان کے اوپر قابو پا لیتا ہے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کی تحریر کے مطابق دل کے 14 دروازے ہیں جن سے شیطان انسان کے دل میں آتا ہے اور باری باری اندر گھس کے تباہیاں مچاتا ہے. اگر اس وقت آپ جسم کو انسان کے جسم کو ایک گھر سے تشبیہ دیں, کوئی بھی گھر ہے, اور دل جو ہے وہ اس کا مین گیٹ ہے, کبھی غلطی سے گھر کا دروازہ کھلا رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چور اچکا اندر آئے گا اور سامان لوٹ کے لے جائے گا, الٹ پلٹ کر دے گا, اندر ایک بے چینی پھیلا دے گا. اسی طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر اس کے دل کے راستے سے آتا ہے, اور اس کے لیے اس نے جو ایسے خفیہ راستے بنائے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اور اس کا طریقہ واردات بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا, اپنا بن کے آتا ہے, جیسے کہ اس آیت سے اگلی آیات میں حضرت آدم اور حوا کے ساتھ اس نے کیا تھا, قسمیں کھا کھا کے اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام بھول کی وجہ سے اس پھندے میں آ گئے. اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی کرتا ہے, پہلے چھوٹا گناہ کرواتا ہے, پھر اس گناہ کو بار بار کروا کے بڑا کروا دیتا ہے, پھر بڑا گناہ جو ہے انسان کو شرک تک لے جاتا ہے, پھر شرک کے بعد انسان سے کفر کرواتا ہے. یعنی سمپل ٹو کمپلیکس اس کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے, معمولی گناہوں سے شروع کرواتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر ناشکری تک لے جاتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ایک انسان جو باشعور انسان ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل میں کہا کہ ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو کرامت دی, شرف دیا, عزت دی, اور اسی طرح ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو اعلیٰ تقویم میں پیدا کیا. ایسا انسان کیسے شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے؟ وہ کون سے چور دروازے ہیں جن سے شیطان ایک انسان کے اوپر کنٹرول پاتا ہے؟ اس بات کو سنتے ہوئے اگر آپ کے تصور میں وہی مثال آ رہی ہو جو میرے ذہن میں آ رہی ہے تو شاید ہم ساتھ چلتے ہوئے ایک ہی طرح سوچ سکیں. مجھے ایسے لگتا ہے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہ جیسے کوئی جہاز میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں اور ایک پائلٹ ہے جو سب کو ایک خاص ڈیسٹینیشن پہ لے کے جانا چاہتا ہے, اور ایسے میں کسی بھیس میں یا کسی دھوکے میں کچھ ہائی جیکرز جہاز میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ موقع دیکھ کر پائلٹ کی کن پٹی پہ کوئی گن رکھ کے جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں, اور اس طرح پھر وہ اکیلا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جتنے لوگ اس فلائٹ میں ہوتے ہیں ان کی بھی زندگی خطرے میں پڑتی ہے. اسی طرح شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ ایک انسان کے پاس آتا ہے اور اس کی وجہ سے پورے گھر میں بے چینی پھیلوا دیتا ہے. پہلا دروازہ جس کے ذریعے سے شیطان کسی کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے وہ ہے غصہ, غضب, کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اپنا نہیں رہتا. آپ نے اس کا کئی بار مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان اچھا بھلا بیٹھا, باتیں کرتا, کھاتا پیتا, اچانک کسی بات پہ غصہ آیا, اس کے بعد برتن ٹوٹنے لگتے ہیں, زبان سے غلط باتیں نکلنے لگتی ہیں, آنکھیں شعلے مارنے لگتی ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, خون جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان جسم میں داخل ہو چکا. آپ تصور میں رکھیں کہ شیطان جسم میں گیا, اب دل کے راستے سے اندر گیا, اب جب اندر چلا گیا, کسی کے پاس آپ کی گاڑی کا سٹیئرنگ آ جائے یا آپ کے جہاز کا ہینڈل آ جائے تو وہ جو چاہے کروائے, آپ کو سمندر میں گرنے کا حکم دے دے, آپ کو اٹھانے کا حکم دے دے, آپ کو کسی ملک کی طرف اپنے جہاز کو موڑنے کا حکم دے دے, انسان کرے گا. بالکل اسی طرح غصے کی حالت میں انسان اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا, اور اس کو اگر انسان اپنے عملی رویوں میں نوٹ کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی دکھیں گی کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو واقعی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پیٹنے لگتی ہیں, بعض دفعہ اپنے شوہروں کو بد دعا دینے لگتی ہیں, بعض دفعہ خون کے رشتے ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کی قسمیں کھانے لگتے ہیں. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے. اپنی اس کیفیت کو ہم سب نوٹ کریں. जब मुझे गुस्सा आता है तो उस वक्त मेरे दिल का क्या हाल होता है, उस वक्त मेरा क्या दिल चाह रहा होता है। और एक चीज़ ज़हन में रखने की है कि शैतान किसी इंसान के ऊपर कंट्रोल कब पाता है, जब कोई इंसान इंतहाई रवैये में हो। इंतहाई रवैये कहते हैं एक्सट्रीमिज्म, या बहुत गम में बंदे के दिल पे आ जाता है, या बहुत खुशी में बहका देता है, बहुत खाने से शैतान पेट में आ जाता है, बहुत सोने से आता है, यानी एक्सट्रीम एटीट्यूड रवैये। आप बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत आप खाएंगे ना, तो उसके बाद आपका अपने ऊपर कंट्रोल ख़त्म होगा। आप कह सकते हैं कि यू लूज़ योर सेल्फ कंट्रोल। बहुत खुशी में देखिए कि इंसान गलत काम करते हैं, क्योंकि शैतान उनसे खुशी के नाम पे करवाता है। ज़रा सा गम जिंदगी में आया, इतना डिप्रेस कर दिया कि सारी नेमतें भूल ही गई जो मौजूद थी, और गम की तस्वीर बना इंसान अपने चेहरे से, शिकवे करते करता हुआ दिखता है कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की। ये शैतान के रवैये हैं। गुस्से पे काबू पाने के लिए इंसान को इस चीज़ से आगाह होना चाहिए कि ये मेरे लिए कितनी ख़तरनाक चीज़ है। इस मौजू पे हम अपने एक लेक्चर में बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं, किसी मौके पे इंशाल्लाह आपको सुनाया जाएगा, तो आप उससे फील कर सकते हैं कि गुस्सा इंसान के लिए कितना नुकसानदेह, और किस तरह से, अगर सिर्फ आप सब जो लोग यहाँ मौजूद हैं और उस दिन नहीं मौजूद थे, तो उनके लिए सिर्फ यही टिप दूंगी कि एक तो वो चीज़ें हैं जिसको हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते हैं, पानी पी लेना और वज़ू कर लेना, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो, यानी उसको आप अपनी पोजीशन बदल लें, लेकिन इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली भी अपना इलाज करना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी कैफियत आए तो इंसान गौर करे कि मैं क्यों इतनी जल्दी गुस्से में आ गई, क्या वजह थी, रीज़न क्या थी। खुराक को चेक किया जाए, बहुत गुस्सा आता है कभी किसी को तो अपने खाने को चेक करे। फिर बाज़ दफ़ा अपने पहनने की हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है, माहौल को बदला जा सकता है, लेकिन गुस्से के अंदर इंसान वाकई शैतान के हाथों में एक कठपुतली बन जाता है। आप कहते हैं बात तो छोटी सी थी, आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया था? उनको नहीं आया था, गुस्सा आने की देर थी, शैतान अंदर दाखिल हो गया, और बाद में सगे भाई बैठे बैठे लड़ने लग जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है कि अपने गुस्से पे काबू पाया जाए। जब हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होगी तो इंशाल्लाह ताला हम अपने आप को फिर उससे महफूज रखेंगे। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ये जितनी चीज़ें हम नोट करेंगे, इन सब की आप एक एक्टिविटी बना लें और अपने घर में वहाँ वहाँ लगा लें जहाँ आपकी बहुत नज़र पड़ती है, और फिर आपने अपने आप को चेक करना है, क्या शैतान इस वक्त मेरे ऊपर तो नहीं हावी हो रहा, क्या मैं गुस्से पे तो नहीं आ रही। जो ही गुस्सा आए फौरन सोचें कि ये तो शैतान मेरे घर में आने वाला है, ये तो एक चोर है, एक डाकू है, एक लुटेरा है कि जो मेरे दिल की दुनिया को बर्बाद करने वाला है। और अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का दिल जब अल्लाह के जिक्र से खाली होता है तो शैतान इसमें धरना देकर बैठ जाता है, यानी उसको अपना घर समझ लेता है, और जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो शैतान दुबक कर भाग जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल शैतान से खाली रहे तो कुछ ना कुछ अल्लाह की याद आपके दिल में रहे, ज़ुबान पे रहे, दिल में रहे, गफलत नहीं आनी चाहिए। जब हम खुदा फरामोशी की ज़िंदगी बसर करते हैं ना, तो शैतान के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं, फिर वो नचाता है। एक रिवायत में आता है कि, यानी खुलासा उसका ये है कि शैतान जब बंदे के दिल में घुसता है तो उसके साथ ऐसे खेलता है जैसे कोई गेंद से खेलता है। तसव्वुर में लाए, कोई गेंद है, कोई बच्चा इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, वो लुढ़क रही है गेंद, इस तरह इंसान गुस्से की हालत में शैतान के हाथों में खिलौना बन जाता है। फिर इंसान चाहे भी कुछ करना चाहे, बचना चाहे, वो बच नहीं पाता। बाद में उसको समझ आ जाएगा जब गुस्सा उतरेगा कि मैंने क्या किया, उस वक्त समझ नहीं आता, क्योंकि वो अंदर एक चोर घुसा हुआ है जो उससे गलत काम करवाता है। इसी तरह दूसरा दरवाज़ा जिससे शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल होता है वो है शहवत। शहवत, लस्ट, इंतहा कह लें, इश्तहा कह लें, ख्वाहिश कह लें, यानी शैतान इंसान की आम चीज़ें जिसका कोई ज़रूरत से ताल्लुक़ नहीं होता उसको इतना ज़रूरी बना के पेश करता है कि बाज़ दफ़ा इंसान ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें जो बुनियादी तौर पे इंसान के लिए कोई इतनी अहम नहीं होती, शुरू में उनकी रग़बत दिलाता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसान के लिए महसूस कराता है कि बस ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी ना तो बस देखना फिर तो मैं बहुत खुश हूँ। जो ही वो चीज़ आपके पास आ जाती है ना, फिर कुछ अरसे के बाद उसको आपकी ज़रूरत बना देगा। हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, पिछले 5 साल पहले बिलफर्ज हम उन चीज़ों के आदी नहीं थे जिसके आज आदी बन चुके। आज ऐसे लगता है कि ये इतनी ज़रूरी है कि इसके ऊपर गुजारा ही नहीं हो सकता। मिसाल दूंगी, सेलफोन। आज के दौर में ऐसे लगता है कि सेलफोन के बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता, और इवन अल्लाह के कलाम की मजलिस में भी हम बैठते हैं तो हम उस वक्त भी इस खौफ का शिकार होते हैं कि अगर मैंने सेलफोन बंद कर दिया तो शायद कोई कॉल मिस ना हो जाए। क्या हो गया, हम क्यों ऑन कॉल है, हमारा क्या होगा, हम कोई इमरजेंसी कंडीशन में नहीं कि सेलफोन ना होगा तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कभी नहीं थे, आज से 5, 6, 10 साल पहले सेलफोन्स नहीं थे, फिर क्या होता था। लेकिन शैतान बंदे के दिल में इतना ज़्यादा हिस्सा डालता है कि उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूरत बनाता है। फिर उसके बाद देखिए, पहले घर में एक सेलफोन था, फिर कुछ अरसा गुजरा, ख़वातीन भी जब घर से निकली तो ज़रूरत महसूस हुई कि अब बीवी के पास भी सेलफोन हो, दूसरा सेलफोन आ गया। और आज देखिए कि घर में अगर 5 लोग हैं तो मेरा ख्याल है 6 सेलफोन होते हैं, एक इमरजेंसी के लिए भी रखा होता है कि किसी एक का ख़राब ना हो जाए। नतीजा क्या निकला, अब उसमें क्या हुआ, फ्री मिनट मिल गए। फ्री मिनट का मतलब क्या है कि खूब बोलो। मैं जब सेलफोन्स के इश्तहार देखती हूँ, स्पेशली अपने मुल्कों में जाके आप एड्स देखते हैं बड़े बड़े रोड्स पे, अब तो बातें ही करते जाएं, अब तो सारी रात बोलें। ठीक है, सेलफोन फ्री है, क्या आपकी ज़ुबान फ्री है। बाज़ लोगों के पास जब फ्री मिनट्स होते हैं या लॉन्ग वीकेंड्स हैं या वट सो एवर, तो लोग कहते हैं नहीं मैं आपसे लंबी बात कर सकती हूँ, पर मेरे पास नहीं वक्त आपकी लंबी बात सुनने का, क्या एनर्जी नहीं लगती। फिर जब हम लंबी बात करेंगे तो क्या हम सिर्फ काम की बातें करेंगे। बताइए, एक बामकसद और एक बेमकसद इंसान की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होता, यकीनन होता है। अब आप देखिए, होते होते वो इतना बढ़ गया कि उसके फितने शुरू हो गए। फिर आप देखिए कि एक लड़का, जो एक अर्ली एज का लड़का है या एक लड़की, हर वक्त उसके पास एक ऐसा आला मौजूद है जो उसको सारी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकता है। फिर आप क्या होगा, उसकी खराबियां निकलेंगी। इस पे भी एक जगह मेरा दर्स था मदर्स डॉटर्स का ह्यूस्टन में, तो सिर्फ सेलफोन यानी सिर्फ टेलीफोन पे हमने बात की थी बहुत डिटेल से, उसके सब अच्छे फैक्ट्स भी देखे थे और बुरे भी देखे थे। यानी ये वो इश्यूज हैं सोसाइटी के जिनको हम अमूमन महसूस नहीं कर पाते। यकीन करें, मेरा भी यही ख्याल था कि इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन हमने वाकई प्रैक्टिकली करके, हम मेरा और मेरे शौहर के पास अलग अलग सेलफोन्स थे, पहले तो नहीं होते थे, फिर दोनों के पास हुए, अब ऐसा ऐसा करके हमने एक किया। बहुत शुरू में लगा होगा कि बहुत मुश्किल है, नहीं, और अब मुतमईन है, गुजारा हो जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन उससे आप देखिए आपकी ज़िंदगी आसूदा कितनी होती है। वरना क्या होता है, अगर आपके पास भी फ़ोन है, मियाँ के पास फ़ोन है, हर 5-5 मिनट बाद फ़ोन हो रहा है, अब कहाँ है, अब क्या कर रहे हैं, अच्छा अब किधर है। ये जो हमारी ज़िंदगी इस वक्त इन कामों में चली गई है ना, उसकी वजह यह कि हमने ख्वाहिशात को, लस्ट को ज़रूरत का नाम दे दिया। चलिए एक और मिसाल ले लेते हैं। मसलन आप देखिए कि इस वक्त हम सब अपने सुनने वाले घरों का जायज़ा लें, हमारे फ्रिज और हमारे फ्रीज़र और हमारी पेंट्रीज में कितना खाना पड़ा हुआ है। हम ये सोच के नहीं, ज़रूरत ना पड़ जाए, अच्छा मेहमान ना आ जाए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। फ्रीज़र बंद नहीं होता, इतनी चीज़ें हमारे घरों में होती हैं, पेंट्री बंद नहीं होती, हमें याद ही नहीं आता कहीं की चीज़ें कई महीने बाद निकालो तो ये एक्सपायर हो गई हैं, क्यों ले ली, शायद ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा अगली दफ़ा बाजार गए तो इस ललचाई हुई नज़रों से देखा, अब ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, और वो चीज़ें भी ले आए कि जिसकी वजह से, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इसमें एक बहुत बुनियादी रोल अदा किया मीडिया ने, जब वो लहराती और ख़ूबसूरत तरीके से पेश करती हुई ख़वातीन के ज़रिए से हर हफ्ते में, हर महीने में आपको नई से नई प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, तो इंसान सिर्फ ट्राई करने के बहाने ले आएगा। एक दफ़ा ट्राई के लिए लाया, अगली दफ़ा उसकी ज़रूरत बन गई। आप सिर्फ अपनी लाइफ को देखें, शायद आपको मेरी ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन यकीन करें ये इंसान की आदत है। जितना अपने आप को लग्जरीज का आदी कर लेगा, उतना ही वो सुस्त भी होगा। अब जब काम मेहनत का नहीं रहा तो नतीजा हुआ कि जिस्म फूलने लगे। फिर एक्सरसाइज करने के लिए हमने क्लब ज्वाइन किए, जब हम एक्सरसाइज के लिए गए तो हमें उसके लिए मेंबरशिप फीस लेनी पड़ी। मुझे ऐसी मेरी दोस्तें बताती हैं, गालिबन 25-30 डॉलर महीने की फ़ीस जाती है, और सिर्फ इसलिए वो हफ्ते में, महीने में एक आध दफ़ा जाती हैं कि फ़ीस दी हुई है, पैसे दिए हुए। अच्छा भी क्यों दिए, नहीं फिर वो मैंने, अब तो 2 माह से गई नहीं तो अब ख़त्म कर दें, नहीं अगर ख़त्म किया तो दोबारा नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आपको वो पॉइंट देना चाह रही हूँ कि शैतान कैसे शहवात बढ़ाता है। आम छोटी सी चीज़ को इतना गैर ज़रूरी करके इतना ज़रूरी दिखाता है कि फिर लगता है गुजारा नहीं, फिर हमारे खर्चे बढ़ते हैं, फिर हम कहते हैं अब करें क्या, कमी बढ़ती है तो जाके फिर आखिर हमारे दीन के कामों पर पड़ती है। पहले अगर चले अच्छी जॉब थी तो सारे गुजारे सारे चौंचले चल रहे थे, अब ज़रा जॉब कम हो गई या कोई हल्के दर्जे पे आ गए तो अब क्या कट डाउन होगा, अगर कोई दीन की क्लास थी तो उसकी फीस कट डाउन हो गई, मस्जिद में कुछ जाता था तो वो कट डाउन हो गया, और अगर इवन अगर कोई क्लास लेते थे तो वो वक्त कट डाउन करके हमने उस वक्त में जॉब शुरू कर दी। मुझे इतनी समझ नहीं आती कि ये हर बंदा जॉब के शौक में क्यों है। मैं यंग बच्चियों से कई दफ़ा पूछती हूँ, बताएं आपको क्या मुश्किल है, क्या आपके मम्मी अबू आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, खाती कितना है, आप तो इतना सा खाती हैं, आपको क्या ज़रूरत है जॉब की। नो, वी वॉन्ट इंडिपेंडेंसी और वी वॉन्ट सेलफोन, वी वॉन्ट कार, वी वॉन्ट, कहाँ तक जाएंगे आप सोचिए। यानी एक बच्ची से मेरी एक मौके पे बात हुई तो मैंने कहा कि अल्लाह ने तो औरत के लिए इतनी सिक्योरिटी रखी है, आपके अबू पहले आपके लिए करते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला रखता है ऐसा मौका, फिर शौहर आ जाता है, फिर शौहर की ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत दे, फिर बेटे आगे आ जाते हैं, आपको क्या चाहिए और, इतनी सिक्योर लाइफ। और औरतें मशीन की तरह काम करती हैं, जब एक औरत अपनी जगह से यानी घर से हिलती है तो इतना डिसऑर्डर हो जाता है घर में जितना आपकी गाड़ी का कोई पुर्जा अपनी जगह से हट के दूसरी जगह चला जाए। आपकी गाड़ी रुक जाती है, घरों की गाड़ियां रुक जाती हैं, माँ की गाड़ी रुक गई, आपके बच्चे गैर औरत पाल रही है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जाके जॉब करके हर महीने जो कमाती हैं उसका शायद 25% आप बेबी सिटर को ही दे रही हैं, 5% आपके कपड़ों पे, मेकअप पे और आपके लंच पे लग रहा है, 5-10% आपकी गैस माइलेज बढ़ गई, 5% आपका सेलफोन बढ़ गया, एंड ऑफ द स्टोरी हाथ में क्या है, नथिंग। एक ऐसी खातून है, मैं उनको कई साल से जानती हूँ, तंगी का शिकार होती थी शुरू से, हमारा उनका काफ़ी यानी मैं उनको करीब से जानती थी, क्योंकि हमेशा यही था कि शौहर काम करते हैं और मुझे साथ करना पड़ता है इसलिए कि ज़रूरियात हैं, बच्चों को पढ़ाना है। अब इस तरह कुछ अर्सा पहले मेरी उनसे बात हुई, फुलां बेटी वो भी जॉब कर रही है माशाल्लाह, फुलां वो भी कर रही है, तीनों कर रही हैं, मियाँ भी, अब 5 लोग घर के जॉब कर रहे हैं। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा माशाल्लाह अब तो फिर आप बहुत ही आसूदा होंगी। कहती कहाँ, पे आने से पहले बिल आए होते हैं। तो मैंने कहा आपने क्या लिया, आपको क्या मिला, सिर्फ दर्द है सर। कह रही सच है, निकल नहीं सकते, घर ले लिया अब उसकी किस्तें दे रहे हैं, घर लिया उसके अंदर अब सोफे ले लिए, यानी आप सोचिए कहाँ जाएगा। इसी से अगला तीसरा दरवाज़ा खुल जाता है शैतान का, हिरस। ये दोनों साथ लेके फिर इसको हम साथ देखेंगे, यानी पहले ख्वाहिश भड़काए इतना। और आप यहाँ नोट कीजिएगा, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जो ग्रैब किया था या उनसे अल्लाह का हुक्म बुलवाया था वो ख्वाहिश के रास्ते था। आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौहा में हम पढ़ते हैं कि फनसी आदम, आदम भूल गए, भूल हुई थी, नाफरमानी नहीं थी, भूल कब हुई, जब शैतान ने ये ख्वाहिश पेश की कि आदम क्या आप चाहते हैं कि आप बूढ़े ना हो, क्या आप फरिश्ता बनना चाहते हैं या आपको अपनी लंबी उम्र चाहिए। मुफस्सरीन कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ये लफ्ज़ सुन के इतना उसकी बातों में आगे, क्यों मैं जवान रहूँगा, मुझे मौत नहीं आएगी, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, और जो ही ख्वाहिश पैदा हुई शैतान के कब्ज़े में आ गए। आज भी वो बंदा जो अपने आप को ख्वाहिशात से रोक लेगा ना, वो शैतान के कब्जे से महफूज होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा ना कि वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान। फिर इस तरह 30वें पारे में आता है कि आप मेरी इसलाह कीजिएगा अगर मैं सही ना पढ़ सकूं, कि सूरह नाज़ियात की गालिबन आयत है कि नहन नफ्स अनिल हवा, उसके एंड पे आता है, किसी को याद है पहली पहला हिस्सा, अभी देख लेते हैं, नहन नफ्स अनिल हवा फिनल जन्नत हुवल मा, 1 मिनट में अभी आपको इसमें से देख के बताती हूँ कि शैतान ख्वाहिशों के साथ कैसे खेलता है, और जो बंदा ख्वाहिश पे काबू पा लेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फिर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ फरमाएंगे। एक जन्नत में जाने वालों की खूबियों का जिक्र है कि कौन लोग जन्नत में जाएंगे, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वह नहन नफ्स अनिल हवा, वो शख्स जिसने अपने आप को ख्वाहिश से बचा लिया, जो अपने आप को ख्वाहिशात के हाथों में नहीं ले जाने देगा, ऐसा ही बंदा अल्लाह की रहमत में होगा। ये आयत है सूरत नाजियात की, और आयत का नंबर भी आपको बता देती हूँ, 40 है। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, और वो जो कोई रब के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिश से बचा लिया, बस बेशक जन्नत उसका मावा है, ठिकाना है। यानी ख्वाहिशों पे काबू पाने वालों के लिए जन्नत में जाना आसान होगा। आज देखिए कितनी डिस्ट्रेक्शन है, मैं जब कहीं भी दर्स के लिए जाती हूँ मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि पहले उस रूम को सेट करना, लोगों को एक ऐसे मूड में लेके आना कि अब अल्लाह का कलाम उनके दिलों पे महसूस हो और उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसके बावजूद ख्वाहिशात इतनी, तमन्नाएं, कहीं कोई खूबसूरत चीज़, कहीं कुछ, कहीं कुछ, हमारे अंदर कितनी अट्रैक्शन, मतलब कितनी डिस्ट्रैक्शन होती है। देखिए अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन में कितना रब्त मिलता है ना। मैंने अपनी ट्रैवलिंग में कई ऐसी नेचुरल प्लेसेस को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहाड़ी इलाकों में या बड़ी दूर शहरों में इतना सुकून और इतनी खामोशी होती है कि आपको अपने दिल की आवाज़ भी थक थक करती सुनाई देती है। मैं कहती हूँ यहाँ लोग हो ना तो मैं यहाँ दर्ज करूँ इनके लिए। आप ज़रा अपने घर में बैठ के सुने। अब बिल्कुल जब अकेली हों दिन में, दोपहर में, आप सोचिएगा कि मेरे इर्द गिर्द क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं। महसूस करेंगे ना, फ्रिज के चलने की आवाज़ होगी, गज 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 गज। थोड़ी दूर आप देखेंगे तो आप फील करेंगे एसी के चलने की आवाज़ है। फिर उसके बाद आप फील करेंगे तो आपके टेलीफोन की आवाज़ है। कहीं कम जहाँ माशाल्लाह सारा दिन टीवी चलते रहते हैं तो फिर उसको तो आप बात ही ना छोड़ें। बाज़ दफ़ा लोग फ़ोन करते हैं, बैकग्राउंड में इतना शोर होता है। मैं कहती हूँ कि इंसान कितनी आवाज़ों के बीच में घिरा हुआ है, इसीलिए तो अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकता। ज़िंदगी आसान और सादा, जिसको यानी मिल गई ये नसीब हो गई, यकीन करें वो खुशकिस्मत है। अल्लामा इकबाल की मुझे एक नज़म का भी एक खुलासा याद आ रहा है कि मतलब वो कहते हैं कि जो ज़िंदगी की हकीकत तुमने पूछनी है तो कोहकन से पूछो। जो पहाड़ों को जाके खोदता है या फितरत या नेचर के करीब रहता है, वहाँ इंसान को क्या मिलता है। और हकीकत है कि मैंने भी ऐसी जगहें अल्लाह के हुक्म से देखी हैं कि वहाँ जाके बस एक ही तसव्वुर दिल में आता है और वो क्या, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका दिल धड़क रहा होता है ना, कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतने खूबसूरत मंजर आपके सामने आते हैं। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मादी दुनिया में हम आ गए ना, उतना हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक कमज़ोर हुआ। एक और एंगल से भी इसके आप साथ शेयर करूँगी आपके। बस आप देखिए कि जब लोग खुली फिज़ा में सोते थे, गर्मियाँ होती थी, लोग छतों पर बिस्तर करते थे। शायद आपको भी कोई अपना माजी का वक्त याद आ जाए। आप रात को जब बिस्तर पे लेटते थे, कुछ एक दो घंटा पहले बिस्तर कर दिए जाते थे ताकि ठंडे हो जाएं। फिर उसके बाद जब आप लेटते हैं तो आप ऊपर निगाहें कहाँ जाती थी, सितारों में, हवा चल रही, मच्छर भी आते थे, ये भी मुझे पता है, लेकिन वो भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। अब वो बंदा जो एक खुली छत के नीचे स्याह रंग की, जिस पे सिल्वर कलर के सितारों का काम हुआ है, जब उसको देखेगा तो किससे ताल्लुक़ जुड़ेगा, उस आसमान वाले से ना, उन सितारों के रब से ना, जब उसकी जगह हम छतों के नीचे आ गए, फिर वो छतें सजने लगीं, फिर उस पर गोल्डन काम होने लगे, फिर उसके ऊपर डेकोरेशन होने लगी, फैंसी छतें आ गईं, नतीजा क्या हुआ, कोई बिल्डिंग देखते थे, वाह क्या छत है, क्या खूबसूरत है। आप उसके शहर में आ गए ना, किसने बनाया, किस बिल्डर का बना हुआ है, कहाँ का है, अच्छा ये फानूस कहाँ से लिया आपने, ये आपने पर्दे कहाँ से लिए। हम जब नेचुरल दुनिया में रहते थे तो उसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक था, और आज भी है। जितना नेचुरल जगहों पे जाएंगे ना, आपको रब याद आएगा, और जितनी मादा प्रस्ताना जगहों पे जाएंगे, यानी मैटर है ना, आप डिज्नीलैंड जाएं आपको रब याद आएगा। अब तो सोचते ही रह जाएंगे ना कि ये राइड किसने बनाई और ये चीज़ किसने बनाई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आप देखें, लोग याद आते हैं ना। अल्लाह क्या चाहता है कि ये दिल मैंने अपनी याद के लिए बनाया था। इसको ख्वाहिशों से खाली करते जाओगे तो देखना तुम्हारे अंदर से हिरस निकल जाएगी। ये जो अगला तीसरा दरवाज़ा है ना, हिरस, ये इलाज है ख्वाहिशों से बचने का, कि हिरस को ख़त्म कर दें। हिरस क्या होती है कि किसी की चीज़ देख के बस दिल चाहे कि मेरी भी ये हो जाए। पर बास ख़वातीन, तो अल्लाह माफ़ करे, इस चीज़ का इतना ज़्यादा शिकार होती हैं, चैन नहीं आता जब तक किसी की देखी हुई चीज़ जब वो ले नहीं आती। मैंने ये देखा है कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लोग फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, एक घर एक का है, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का है। आप जब मिलने जाते हैं ना तो एक आपके सामने बहुत अच्छे बर्तन, क्रिस्टल के डोंगे, डिशें, वट एवर ला के दिखाती हैं, बड़ा अच्छा है जी, ठीक है। आप वहाँ से उठ के मिल के दूसरे घर गए, वही चीज़ वो भी उसके घर से आती है, और फिर साथ ही कहता है जिसने पहले ली होती है ना, कहते सबसे पहले मैंने ली थी, फिर इसने मेरी देख के ले ली। अच्छा बाज़ दुकान औरतें दुकानों पर जा कहती वो जो फलां चीज़ है ना वो चाहिए मुझे, फिर उससे अगला नतीजा क्या निकला, लोग छुपाने लगे। मैंने देखे ख़वातीन कपड़े जहाँ से लाती हैं डिज़ाइन, वो बताती नहीं हमने कहाँ से लिए, क्योंकि वो लोग जाके वहीं से ले आएंगे। हिरस आ गई ना, आपने ये चीज़, अच्छा खाना पकाया आपने कभी बहुत ही मज़े का, तो फिर आप हमें भी बता दें, नहीं, फिर मेरी तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। यानी बाज़ दफ़ा कपड़े लोग वो पहनना पसंद करते हैं कि जो दूसरा कोई ना पहने। यानी मेरे वालिद कि एक दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ ने किसी दूसरे मुल्क में एक बुटीक खोला, तो वो बताने लगी कि जो सूट हमें 200-300 रुपये का बनता है, इससे बहुत पुरानी बात है, 8-10-12 साल, बल्कि इससे भी पहले की बात है। कहने लगी कि वो हम दुबई में या जहाँ थी तो वहाँ कई हज़ारों में बेचते हैं और दिरहम में बेचते थे। क्यों भाई, क्या वजह है? कहती सिर्फ एक हम चीज़ साइन करके साथ देते हैं कि इस जैसा दूसरा जोड़ा नहीं बनाएंगे, जैसे वो रजिस्ट्रेशन, वो क्या कहते हैं, कॉपी राइट्स नहीं है, एक और लफ्ज़ इसके लिए बोलते हैं ना हम लोग, एक्सक्लूसिव का लफ्ज़ ने भी तो हमें बहुत बड़ा कर दिया ना भाई। मैं हूँ क्या, मेरे अंदर कितनी गंदगी है, मेरा रब की
दे रहे ना साथ में कि किसी और को
जी,
नहीं
यानी
देंगे।
मेरे अंदर आप सोचिए मेरा क्या मुकाम है। मैं जब इठलाती भी चलती हूँ, जब मेरी चाल बदल जाती है, जब मेरा जूता इतना हाई हील का है, जब मैंने अपने आधी टांगे नंगी की हुई हैं, लोग तो मुझे देख के पता नहीं प्रिंसेस कह देंगे। मैं हूँ क्या, मेरा रब की निगाहों में क्या मुकाम है? कितनी तकलीफ, कितना दुख, कितना इंसान का दिल चलता है ऐसे ही लोगों को देख के, कि जो बेसोचे समझे दूसरों की तकलीद कर रहे हैं, वो नहीं सोचते। यानी मैं हर आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो मुसलमान खवातीन के लिबास में तब्दीली देख रही हूँ, क्योंकि हमारा इतना मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है, ड्रामों में फिल्मों में क्या आ रहा है हमें नहीं पता होता, लेकिन जब हम रियली कभी किसी ऐसे लोगों के ग्रोह में जाते हैं तो एकदम शॉक लगता है। शायद आप मेरी जहालत पे हंसेंगे, मुझे लास्ट वीक पता चला, लास्ट वीक भी क्या कहूँगी, आज का दिन क्या है, मंडे है ना, लास्ट वीक नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले वेनसडे या थर्सडे को मुझे पहली दफ़ा पता चला कि लंबी कमीज़ों का रिवाज आ गया। आपको पता है कि मेरी वजह से, आप ना सुन लीजिएगा ये बात, यकीन करें लास्ट थर्सडे को मुझे ये बात पता चली कि लंबी कमीज़ों का रिवाज आ गया। तो मैंने सोचा, मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि मैं 10 साल पुराना सूट पहनना ये लंबा है, दिल में भी नहीं, मुझे पता है जब छोटी कमीज़ें चलती थी मैं वही पहन रही हूँ पिछले 10 सालों से, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सोचा अच्छा मेरे कपड़े अप टू डेट हो गए, मैंने छोटे नहीं किए, बिलाहिर वो फैशन के साथ बड़े हो गए, तो क्या हुआ अब मुझे, अब मेरी जहालत देखें। लेकिन जब मैंने एक खातून को देखा, दूसरी को देखा, मैं खुश हुई, मैंने कहा चले शुक्र है कमीज़ें लंबी तो हुई, कुछ तो ढका, लेकिन तकलीफ़ और इंतहा और दुख के टांगे नंगी हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन को घुटनों तक शलवारें पहने देखे हैं। आप इसको शॉर्ट कह लें, आप इसको पता नहीं कोई क्या बता रहा था, कैप, मैं कैपरी कहने वाली थी। आप सोचिए, बाजू गायब, टांगे नंगी, आप कमीज जितनी मर्जी लंबी कर लें, असल बात क्या, ये सब क्या है, किसने एक दफा पहना और आप उसके पीछे लग गए? ये डिजाइनर्स, ये फैशन, ये क्या है, क्या ये हमारी जिंदगी को, हमें, हम इसलिए बने थे? शैतान वाकई में सोचते हमें देखे हंसता होगा कि वाह कैसा पकड़ा इंसान तुझे, कि तू कैसे ऐसी चीज़ों में गया। एक का घर है तो दूसरा भी वही चाह रहा है, दूसरे के घर में गए तो तीसरा उससे बड़ा चाहता है। शादियों को देख लें, जो एक शादी है दूसरी उससे बड़ी है, जो एक का जोड़ा है वो अगले का वो उससे बड़ा जोड़ा है। यदि मैं जन 2-3 साल पहले की बात है, मैं पाकिस्तान गई तो मुझे, मैंने किसी के मुँह से जो बात सुनी, उस वक्त किसी क्लास में थी तो वहाँ बताया कि शादी थी और दुल्हन की अम्मा जो थी डायमंड का पता नहीं कितने लाख का सेट पहन के आई। अब वो उस सेट से बड़ा हो गया होगा जो अगले दिन वलीमे पे लड़के की माँ ने पहनना था, तो रातों रात उसने ज्वेलर्स को बुला के खुलवा के दुकान तो उससे बड़ा सेट खरीदा, कि मेरी तो इज्जत का मामला है, अगर मैंने इससे भारी सेट ना कल पहन के गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। और वाकई फिर ऐसी नाक कटती है, आप उससे भी बड़ा पहन लें। बात क्या है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ है ये शैतान खेल रहा है हमारे दिलों से। आज अपने आप को मुतमईन करें कि मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, यकीन करें इतना सुकून, इतनी ठंडक मिलेगी आपको कि आपको ये मिट्टी की चीज़ें लगेंगी। देखिए इंसान बड़ी आला चीज़ है, अल्लाह ने इंसान को अपने लिए पैदा किया था, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला कहते हैं खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीया, मैंने इंसान तुम्हारे लिए पैदा किया जो ज़मीन में है। ये सब तेरा है, सूरज इंसान के लिए काम कर रहा है, चांद इंसान के लिए काम कर रहा है, सितारे, पहाड़, दरिया, तुम मेरे बन जाओ, सब तुम्हारा, तुम मेरे। हम इस मिट्टी और चूने से खुश होने लगे, हम मिट्टी की दीवारों पे गोल्डन पेंट करके कहते हैं इट लुक लाइक गोल्ड, तो ज़रा सोचिए कि वो गोल्ड क्या होगा जो अल्लाह ने रखा। अभी चंद दिन पहले मैंने देखा कि एक खातून डायमंड्स बेच रही थी, तो मैं ऐसे ही अपने शौक के लिए देखा कि क्या हो रहा है। आप हैरान होंगे, यानी मेरी, मैं अपनी ना समझिए आपको बता रही हूँ कि मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें, यानी शायद उसको डॉलर स्टोर से मिलने वाली रिंग के बराबर ही मैं समझूंगी जिसमें 3 मोती जड़े हुए हैं, और मेरे हिसाब से कोई डायमंड का स्टाइल नहीं था। मैंने कहा ये कितने की है, सिर्फ एक रिंग और उसमें 3 छोटे, यानी 3 छोटे नहीं बल्कि भद्दे से, छोटे में तो नज़ाकत होती है ना, मोटे मोटे 3 से मीडियम से साइज़ के स्टोन थे। तो मैंने कहा इसकी क्या कीमत है, तो उसने जाके बताया, तो 2000 समथिंग डॉलर की थी, 2000 से ऊपर थी डॉलर। मैंने कहा इसमें क्या, कह रही ये डायमंड है। मैंने कहा ये बताएं मुझे कैसे पता चलेगा ये डायमंड है, कहती हम जो कह रहे हैं ये डायमंड है, हम सर्टिफाइड हैं। आप ज़रा सोचें, यानी आप सोच सकते हैं कि एक औरत की गर्दन में अगर आप 5 से 10 हज़ार डॉलर का सेट पहनाते हैं तो उस गर्दन ने अल्लाह के आगे झुकना भी है कि नहीं झुकना। ये क्या हुआ, हम मट्टी से खिलौनों से खुश हो गए, देखती रही ये देखें ये दे, उसको क्या पता मैं किस नियत से देख रही हूँ। तो खैर मैंने उससे बात की, फिर मैंने उसको कहा कि मैं मानती हूँ बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, वाकई आपकी दुकान में जितनी भी चीज़ें हैं मुझे इसमें से हो सकते आधी से ज़्यादा जो मुझे खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि अल्लाह ने जो अपने ईमान वालों के लिए पैदा किया है वो इससे भी खूबसूरत है, कि फ़ला तआलमु नफ्सुम्मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रत आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या तैयार किया है। और यकीन करें एक लम्हे के लिए मेरे दिल में भी ख्वाहिश नहीं आई कि मैं इसमें से कोई एक चीज़ लूँ, मेरी हो, कभी नहीं कतन। मुझे कोई ऐसी चीज़ अगर दे भी देगा ना तो मैं उसको पहनना अपने लिए पसंद ही नहीं करती कि मेरे लिए ये अफोर्डेबल ही नहीं है, मैं इसकी कहाँ हिफाजत करूंगी, मैं तो फेंक दूंगी, मैं तो इधर गिर गिरा के छोड़ दूंगी, नतीजा क्या होगा बाद में पता चलेगा, वो तो डायमंड था और मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करी, ये आप रखें जी मुझे नहीं ये चाहिए। यानी कैफियत बता रही हूँ, बंदे का दिल जब दुनिया की ख्वाहिशों और हसरतों से पाक है ना फिर आप अच्छा, वरना आप एक लेके आएंगे तो दूसरा पसंद करके आएंगे। एक चीज़ बंदा लेके आता है और एक गम छोड़ के आता है, क्या कि ये तो ले लिए लेकिन ये अगले के पैसे जोड़ने, अब ये लेके आऊंगी, फिर उसके पैसे जोड़े जमा किए मियाँ की सिफारिश की कुछ थोड़ी खा उसकी खिदमत की, जब वो लेने गए तो एक तीसरी चीज़ छोड़ के आ गए, हसरतें ख्वाहिशें, और यही चीज़ें फिर हसरतों में बदलती हैं। बहरहाल इस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन आगे चलते हैं। चौथा दरवाज़ा जहाँ से शैतान इंसान के दिल में दाखिल होता है वो क्या है, पेट भर कर खा लेना। इमाम इब्ने जौज़ी कहते हैं कि जब इंसान पेट भर के खा लेता है ना तो समझे कि शैतान के फंदे में आ गया। और आप इसको देख सकती हैं कैसे, जब आप दोपहर का खाना खा लेती हैं, सुबह उठ के नाश्ते के बाद चाय या जो भी आप चाय के रस अदरस लेते हैं या बिस्किट लेते हैं, जो आपके काम करने की स्पीड होती है और जो आपकी फुर्ती है, दोपहर के खाने के बाद क्या होता है, एकदम आंखें बंद होती है ना, ऊंघने लगता है। जितना पेट भर के खाते हैं उतनी नींद आती है, उतनी सुस्ती आती है, उतना इंसान का जहन काम करना छोड़ता है। और जब बंदे की ज़िंदगी का मकसद ही खाना पीना हो जाए, आज एक औसत दर्जे की खातून क्या कर रही है, आज हमारी बहनों में से अक्सर बहनें अल्लाह के दीन के लिए डिवोट क्यों नहीं हो पाती, बावजूद इसके कि उनका दिल बहुत चाहता है कुकिंग खाना। यानी ये खातून है सिर्फ, वो इसलिए कुरान की क्लासों में फोकस नहीं हो पाती कि मेरा मियाँ जो है वो चाहता है कि हर वक्त गर्म खाना मिले, और शुक्र है तुम्हारी क्लास ख़त्म हो तो हमें भी कोई खाना अच्छा मिले, और मैंने हमेशा उनके घर से अच्छे खाने देखे हैं। इसके बावजूद नाशुक्री का बाद दफ़ा ये हाल होता है कि नहीं, जब से कुरान की तरफ लगे हैं तो हमारा तो खाना पीना छूट गया, ऐसा नहीं है। यकीन करें जितना इंसान पेट भर लेता है ना उतना शैतान उसके कब्ज़े में आता है, शैतान के कब्ज़े में आ जाता है। और मैं तो अक्सर ये बात कह देती हूँ कि अल्लाह ताला ने तो हमें हुक्म क्या दिया था अल्लाह के नबी के ज़रिए कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम के साथ जिसने पैदा किया। ये पहली वही थी जो इस उम्मत के नबी पे उतरी, हुक्म था अमर था, और किस चीज़ का, इल्म हासिल करो, कौन सा इल्म, बिस्मि रब्बी का। और आज उस उम्मत का हाल क्या है, इल्म से क्या ताल्लुक है और कहाँ पहुँच गए, कुल खाओ वशरब, यानी मैं सोचती हूँ कि पहली वही ऐसे लगता है कुल की थी, कुल नहीं कुल खाओ, कुलू वशरबू वश्र पियो, यानी आज ऐसे लगता है कि हमें हर लम्हे खाने का शौक है। यकीन करें जब आप अपने, मैं शादी के बाद पहली दफ़ा अपने मियाँ के साथ पाकिस्तान गई, अब शौक में बंदा सबको मिलता भी है और मुझे इनसे शर्म आती थी, कहते थे यहाँ हर वक्त लोग खाना खाते हैं या खाना खा रहे हैं, खाने की टेबल पे पूछ रहे हैं आप दोपहर में क्या खाएंगे, और दोपहर में बता रहे हैं कि शाम की चाय के साथ आपको ये मिलने वाला है और रात के खाने में ये, और 12 बजे रात को उठ के चले टिक्के खाने जाते हैं और या धक्के खाने जाते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं। यानी इतने हैरान होते थे और वाकई मुझे शर्म आती थी, क्योंकि हम घर में जब खाना एक दफ़ा मैं पका लूँ खा लूँ उसके बाद मैं दोबारा तस्करा भी नहीं करती। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि हम मेरे मियाँ खाना भी एक दफ़ा खाते हैं और खाने का जिक्र भी नहीं ज़्यादा सुनते। दो तीन दफ़ा मैं जिक्र कर दूँ तो वो कहते हैं खाना तो खा लिया हुआ है, क्या बार बार खाएंगे। चले मियाँ की बात तो मैंने ऐसी कह दी, इसको तो अब छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिन में 2 बार खाना खाते देखा, तो आपने कहा कि आयशा क्या तू ये चाहती है कि तेरा एक ही शुगल रह जाए। अल्लाह अकबर। 12-13 साल की बच्ची जो 17-18 साल की उम्र में बेवा हो गई, इतनी हल्की फुल्की थी कि जब वाकिफ हुआ तो हौदज में वो नहीं थी और कोई उनके ना होने को महसूस ही नहीं कर सका, इतनी हल्की फुल्की थी। खिदमत कर गई ना दीन की, अल्लाह के नबी के बाद तकरीबन नस सदी तक इल्म के खजाने दिए उन्होंने उम्मत को। कैसे मिला? क्योंकि उनको खाने पीने की फिक्र नहीं थी। और आप देखिए जितना हम खाते हैं ना, या जितना अपनी बच्चों को या अपने घर वालों को खिलाते हैं, उतनी हमारी नाशुक्रियाँ हैं। फ्रिज बाहर तक भरी हुई है और बच्चे कहते हैं क्या खाएं, नथिंग टू इट। फिर माँ को भी पता है कि माशाल्लाह मैंने इतनी ग्रोसरी लाई हुई हूँ, मैंने इतनी ग्रोसरी लाई अब ख़त्म भी करनी है, अच्छा बेटा ये खा लो, अच्छा ये खा लो। मैं देखती हूँ चार चार खाने पके होते हैं और बच्चे बर्गर बाजार से ऑर्डर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, और बिगाड़ती कौन है? माजरत के साथ माँ। चार चार 3-3 साल के बच्चों को मैं पूछती हूँ बेटा क्या लोगे, बेटा क्या करोगे, तो मैंने हंस के कहती हूँ, मैं कहती हूँ बच्ची से क्यों पूछ रही हैं, नहीं ये अपनी पसंद से पहनेगी। मैंने कहा देखें आज एक छोटा सा स्कार्फ आप उसकी पसंद से ले रही हैं ना, या आप उस बच्ची को पूछ रहे कौन सी बुक लोगे जिसको कुछ पता ही नहीं, कल के आपकी पसंद की चीज़ें दूसरी बड़ी लेगी। फिर बच्चे अगर अपनी पसंद से रिश्ते कर लें, शादियां कर लें, तो फिर इंसान क्यों परेशान होता है? तो बहरहाल ज़िंदगी का मकसद खाना पीना नहीं रह जाना चाहिए, इसलिए कि इसके साथ इंसान को इबादत करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप एक चीज़ इसको और एंगल से भी देखें, हमारी मसरूफियत का बेशतर हिस्सा किस चीज़ के साथ है? मसलन मैं एक हल्का सा स्केच रखना चाहूँगी आपके सामने, ग्रोसरी लेते हैं, ताल्लुक है ना खाने से, घर में आके समेटते हैं खाने से, किचन के अंदर खाना पकता है खाने से, खाने के बाद बर्तन ज़्यादा होते हैं खाने से, ट्रैश ज़्यादा बनता है खाने से, ऐसे ही है ना, बाथरूम ज़्यादा यूज़ होता है खाने से। आप सोचिए औरतें मोटी होती हैं, फैटनिंग हुई, उसके बाद निकले आप अपने आप को एक्सरसाइजिंग में लेके गए, वजह क्या बनी? खाना बना। बाद लोग मोटे होते हैं और फिर वज़न कम करने के लिए फिर और खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें आप खाते हैं जिससे वज़न कटे, ऐसी है ना। यानी सिर्फ अगर आप हम अपने खाने पे कंट्रोल कर लेना, हमारे घर का ट्रैश ख़त्म हो जाए ज़्यादा, हमारी ग्रोसरी ख़त्म हो जाए और हम एक न्यूट्रल ज़िंदगी गुजारें। देखिए इंसानियत और हैवानियत में बहुत यही फ़र्क है कि वो तो खाने के लिए जीते हैं और इंसान को तो अल्लाह ने कोई और मकसद दिया था। तो लिहाजा अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि वो हमें इस तरह का ना खिलाए कि जिससे दिल सख्त हो जाए। बहुत खाने से दिल सख्त होता है, जिस्म तो सख्त होता है, जब आप बहुत खा लेते हैं तो सांस लेना मुश्किल होता है, लेकिन इसी तरह दिल के अंदर जज्ब की कैफियत नहीं आती। और इसकी बेहतरीन मिसाल रोज़े हैं। आप जो इफ्तारी से जो पहले के 1-2 घंटा या असर की नमाज जिस खुशू और खुदू से पढ़ते हैं, चाहे वो नकाहत ही होती है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी उस वक्त फील होती है ना, बच्चे भी लड़ रहे हैं तो आप कहते हैं मैं नहीं इनको डांट रही, आप चुप के रहते हैं, आपको कोई ताना भी दे दे कहते कौन जवाब दे, वजह क्या? कि आपका पेट खाली है। और जूं ही पेट भरता है तो हम फिर क्या बन जाते हैं, वो सब में शैतान आ जाते हैं ना अंदर। पांचवी चीज देखते हैं शैतान कैसे हमारे दिल के साथ खेलता है, हसद, एनवी या जेलसी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। ये अबू दाऊद की रिवायत है 4903 नंबर की। आप सोचिए कहीं आग लगे तो कुछ भी नहीं बाकी बचता ना, इस तरह इंसान की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। कोई चाहेगा कि उसकी मेहनत से की हुई नेकियां ज़ाया हो? नहीं चाहेगा। ये कब होती हैं? जब हसद होता है। अब सवाल पैदा होता है कि हसद क्या है? हसद कहते हैं किसी के पास कोई नेमत देखे इंसान और ये ख्वाहिश करे कि ये नेमत मुझे मिले कि ना मिले, लेकिन इससे छिन जाए। यानी ये शैतान का एक ऐसा फंदा है कि मुझे ना मिले, नो प्रॉब्लम। क्योंकि एक रश्क होता है ना, एक हसद होता है। रश्क है कि इसको मिली है तो मुझे भी मिल जाए, हसद के कि इसके पास ना रहे। और ये स्टेप्स हैं, गुस्से से फिर कीना पैदा होता है, कीने से फिर हसद पैदा होता है, और फिर उससे इंसान दूसरी दुश्मनियों पे जाता है। अमूमन इंसान अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के बनाए हैं, किसी को शक्ल अच्छी दे दी, किसी को माल ज़्यादा दे दिया, किसी का घर अच्छा है, किसी को अल्लाह ताला ने दीन की दुनिया की कोई नेमत दी। हुक्म क्या है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को अच्छी नेमत में देखे, अच्छे हाल में देखे तो क्या कहे कि बारक अल्लाह, अल्लाह तुझे बरकत दे, या बारक अल्लाह अगर औरत है। इसी तरह आप देखिए कि किसी को अच्छा कपड़ा पहना देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि किसी को नया कपड़ा पहना देखो तो क्या कहो, एल्बिस जदीदन इश हमीदन व मुत शहीदन। तुम नए कपड़े पहनो, एल्बिस जदीदन व इश हमीदन, और तुम्हारी तारीफ़ की जाए, यानी तुम तारीफ़ वाली ज़िंदगी गुजारो कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, व मुत शहीदन और तुम्हारी मौत शहादत वाली हो। अब ये कितनी प्यारी दुआ है, अगर हमें ये दुआ आती हो, हम किसी को भी नया कपड़ा पहना देखें ये दुआ दें, तो क्या उसके बाद दोनों के बीच में कोई गुस्सा कीना बोझ रह सकता है? हम तो किसी का अच्छा दे के जल जाते हैं, हमारी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। हम तो सुबह से सोच रहे थे आज सबसे अच्छा मेरा ही कपड़ा है, अब वहाँ जाके देखा तो वो तो किसी और का भी निकल आया, गुस्सा शुरू हुआ, गुस्से से कीना आया, कीने से बुगज आया, किसी ने कहा देखा तुमने फलां को देखा कितनी प्यारी लग रही थी, तो आप कहेंगे हाँ बस इतनी इस उम्र में ये रंग कोई पहनने का थोड़ी था। यानी हसद की बहुत अलामतें हैं, ये सब हम छोटे छोटे क्लिप्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हर मौजू पर एक पूरा भरपूर हम एक फुल टाइम लेक्चर भी कर सकते हैं, और ये एक पूरा कोर्स है जिसमें हम इस पे 14 डेज चाहिए होते हैं जिसमें हम इसको पूरा करते हैं। लेकिन इस वक्त तो हम सिर्फ़ एक अपना मुहासवा करने के लिए इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो लिहाजा अपना जायज़ा लेना है। आप अपने पास कोई एक्टिविटी बना सकते हैं, बहुत सारी अपनी नेकियां रखें, लिखें तहज्जुदें या कोई अल्लाह के रास्ते में मुश्किल से नेकी करना, और एकदम नीचे आग लगी और वो सब नेकियां जल गईं, और वो आग किसकी थी, हसद की आग थी, जिसकी वजह से इंसान अपने आप को फिर महरूम करता है। कल क़यामत के दिन कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, वजह क्या थी, हसद है। और अल्लाह के नबी सल्लम ने एक मौके पे कहा कि मैं तुम में से किसी ने अगर जन्नती को देखना है तो फलां शख्स को देखना। अभी जो शख्स जहाँ से गुजरेगा ना वो जन्नती है। लोगों ने देखा एक सहाबी गुजरे, वजू किया, वह पानी के कतरे दाढ़ी से भीग रहे हैं। अब एक सहाबी को रश्क लगा, खस हुआ कि मैं देखूँ इनकी क्या नेकी है, तो कहा उनके घर गए, कहा मैं आपके साथ 3 दिन रहूँगा, मैंने कोई नियत की थी कि मत कसम खा ली है कि मैं 3 दिन तक घर नहीं जाऊंगा, तो लिहाजा आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपका मेहमान बनता हूँ। तब तो लोग इतने आसानी से मेहमान बन जाते थे, कोई बोझ नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई तकल्लुफ़ नहीं था। खैर उन्होंने कहा शौक से रहिए, ज़ाहिर है आपकी मुझे मदद करनी है, आप कसम तो नहीं तोड़ेंगे। खैर 3 दिन रहे, उसके बाद कहा कि भाई सच्ची बात बताऊँ मैं क्यों आया था, अल्लाह के नबी की ज़ुबान से आपके बारे में सुना था कि आप जन्नती हैं, तो मुझे भी शौक लगा कि आपकी वो नेकियाँ देखूँ जो मैं भी करूँ तो मैं भी जन्नती बनूँ। फिर यहाँ देखिए हम होते ना तो उससे दुआ कराने लगते हैं, आप दुआ कर दें, आप नेक बड़े हैं, आप जन्नती ना बस मेरे लिए दुआ कर दे, नहीं हम भी वो अमल कर ले, क्योंकि सिरात अल्लाह जीना नमता है ना, रास्ता दिखाओ उन लोगों का। ये तो नहीं कहा कि नेक लोग दिखाओ और हम उनका पल्लू पकड़ लें और जन्नत में पहुंच जाएं। तो खैर बहरहाल उन्होंने फिर कहने लगे मैंने तो आपकी वही नेकियां देखी जो हम भी करते हैं, और वो जो नेकियां वो आज हम सुने तो हमें शर्म आने लगे, तहज्जुद तक उसमें आती थी जो आम लोग भी उस वक्त तक करते थे। तो कहा आप बताएं आपकी क्या नेकी है, कहने लगे कोई खास नेकी नहीं, बस एक मुझे पता है कि मैं कभी अपने दिल में किसी दूसरे मुसलमान के लिए कोई कीना या बुग़्ज़ या हसद नहीं रखता, किसी की कोई नेमत देखता हूँ ना तो मैं खुश होता हूँ। कहा बस यही है वो नेकी जिसने आपको जन्नतियों में दाखिल कर दिया। तो लिहाजा हसद से इंशाअल्लाह ताला बचना है, और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। बस आप देखिए कि जब आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसको दुआ दें, उसको उसकी जब आप उसको उसकी दुआ देंगे ना तो इंशाल्लाह आपके दिल से कीना और बुग़्ज़ निकलेगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब किसी के अंदर आप कोई ऐसी चीज़ देखें, आपको किसी से फीलिंग आए ना, तो आप उसको तोहफा दें, दोस्ती करें, फ़ौरन आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी। जहाँ आपको किसी की कोई चीज़ पिंच करे ना कि ये ऐसा है ये ऐसा है, फ़ौरन उससे आप एक अच्छा काम कर दें। और ये भी ध्यान में रखिए कि हसद हमेशा हम पल्ला लोगों में होता है, मसलन दो दोस्तों में हसद ज़्यादा होगा दो दुश्मनों की बजाय, क्यों? कि बराबर के ना, एक के भी बच्चे हैं दूसरे के बच्चे हैं। मसलन एक के बच्चे बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, फरमा बरदार हैं, दूसरी के अच्छे नहीं, तो वो दो दोस्त हैं आपस में हसद करेंगी। दीनदार दीनदार से हसद करेगा, दुनियादार दुनियादार से करेगा, मालदार मालदार से करेगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी कम्युनिकेशन कर ली जाए तो इंशाल्लाह ताला फिर उससे भी मदद मिल जाती है। फिर इसके बाद छठा दरवाज़ा जिससे शैतान दिल में दाखिल होता है वो क्या है? ज़ाहरी ज़ेबो ज़ीनत, इसको क्या कहेंगे? नुमाइश। दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है आराइश और एक होती है नुमाइश। आराइश तो पसंदीदा है लेकिन नुमाइश पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा जूता अच्छा हो, मेरा तस्मा अच्छा हो, मेरा कपड़ा अच्छा हो, तो क्या ये तकब्बुर है? तो आपने कहा नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। हाँ, हसद क्या है? बतर अल हक की व गिमतिन नास, हक को झुटलाना और लोगों को हकीर जानना। यानी अल्लाह का हुक्म सामने पेश किया गया और आप कहे छोड़ो मैं नहीं मानती, हमसे नहीं होता, ये है तकब्बुर। या लोगों को हकीर जानना, अच्छा कपड़ा पहन लिया तो किसी से बात ही ना करना, गर्दन अकड़ जाए, किसी को उसकी गुर्बत की तवज्जो से पीछे रखना। तो यहाँ जो बात है वो क्या है? जेबो जीनत की नुमाइश। एक है एक इंसान अपनी खुशी के लिए कोई काम करता है, बस आप देखिए कि आप बेड सेट खरीदते हैं ना, हर एक को ज़रूरत है ना, कब बिस्तर पे चादर बिछानी है, आप अच्छी ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं, आपकी चॉइस ही ऐसी है। बाज़ लोग सस्ती से सस्ती चीज़ लेते हैं लेकिन सलीका अच्छा होता है, आपकी वो चीज़ बहुत उठती है। बाज़ बहुत महंगी भी ले लेते हैं और ख़ूबसूरत नहीं होती। आप कपड़ा बना रहे हैं, कपड़े तो अपने बनाने हैं ना, तो अगर आप बहुत प्यारे बनाने या बहुत सारे बनाने की बजाय मुख्तसर से बनाते हैं, दो तीन बनाते हैं, उसका रंग अच्छा है, कोई हर्ज की बात नहीं। मसला क्या है कि जब आप अपने आप को या अपनी खुशी के लिए पहनने की बजाय दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। नुमाइश मना है, आराइश मना नहीं है। और आज हमारा मुझे लगता है कि जो एटी एड़ी चोटी का जोर लगता है वो नुमाइश पे लगता है। सिर्फ अपनी ज़ात की नुमाइश नहीं होती, हर चीज़ फैंसी हो गई, घर फैंसी, बर्तन फैंसी, और इस फैंसीनेस ने हमें इतना रुसवा कर दिया कि जब तक कोई चीज़ हमारे पास उस लेवल की आती नहीं हम अपने आप को कंफर्टेबली फील नहीं करते। इसके लिए एक हद होनी चाहिए, इंसान अच्छा पहने। इसमें इस्लाम ये भी नहीं मना करता कि आप मिसाल घर बनाएं और आप कहें नहीं जी नहीं, मैं तो इसमें मिसाल है कि मैरून कलर है या कोई गोल्डन है या कुछ ऐसा कलर है तो मैं इस रंग के पर्दे नहीं लगा रहा क्योंकि भाई मुझे मेरा घर खूबसूरत हो जाएगा। या मिसाल है कि घर में कमरे में कारपेट भी होगा ना, कर्टन भी होंगे। अब आपके नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं, कारपेट डालो तुम नीले रंग का और उससे बिल्कुल फ़र्क रंग के जो बिल्कुल उठता नहीं उस रंग के पर्दे लगाओ। मैं नीले कारपेट के साथ नीले कर्टन नहीं लगा सकती, नहीं, इस्लाम पे ढंगा नहीं है। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने कितना हुसन दिया है। मैं हमेशा दरख्तों को देखूँ तो वो जहन में ख्याल आता है कभी कभी कि सब्ज़ पत्तों पे ऑरेंज कलर के ऑरेंज क्यों हैं, ऑरेंज नीले रंग के क्यों नहीं, खूबसूरत होते। दिल चाहता वो फिरोजी रंग के या कोई ऐसे भद्दे से या मुर्दा रंग के ग्रे कलर के ऑरेंज होते या सड़े हुए ब्राउन कलर के ऑरेंज होते। ये किसने रंग सिखा है? सब्ज़ पत्तों में आप देखिए पिंक कलर के फूल खिले हुए हैं। कायनात में कितना हुसन है, हर चीज़ मैचिंग है, सिमेट्रिकल है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मसला क्या है कि जब ज़िंदगी का मकसद ही ये बन जाए, एक चीज़ आपको बग़ैर कोशिश के बग़ैर हिरस के मिल गई आप इस्तेमाल कर लें, और एक यह है कि उस चीज़ को पाने के लिए आप सारा दिन बाजार में खाक छाने और आपकी दो तीन नमाजें जाएं, बहुत फ़र्क है। तो इस चीज़ से भी इंसान को अवॉइड करना चाहिए। अगली चीज़ सातवां दरवाज़ा क्या है? लोगों से उम्मीद बांधना, यानी उम्मीदें अल्लाह की बजाय लोगों से बंधने लगे। मसलन इससे क्या मुराद है कि पहले तो देखें हम सबसे ज़्यादा उम्मीदें किससे बांधते हैं, सोचिए ज़रा। कोई जुमला कभी किसी ने बोला, बेटा तुमसे तो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, तुमने तो मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। औलाद से उम्मीदें बांधते हैं, शौहर से उम्मीदें लगी हुई हैं, हाँ। फिर बाज़ दफ़ा आप देखिए कि ये जो जुमला हम बोलते हैं कि जी फलां के साथ फलां ने तो मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, मना है। बंदे मोमिन की उम्मीद अपने रब के साथ, ठीक है, अल्लाह ताला इंसानों के ज़रिए से ही करवाता है, लेकिन जितना हम लोगों से उम्मीदें बांधते हैं ना उतना ही टूटते हैं। फलां तो मेरी ज़रूर मदद कर देगा, फलां तो ये कर देगा, और नतीजा क्या होगा कि हम फिर उन उम्मीदों में ठोकर खाते हैं। आपने कभी एक चीज़ गौर की कि रिश्तेदार आपके लिए कितना ही क्यों ना करें, आप देखते हैं कि खुशी नहीं होती, और गैर कोई दोस्त सहेली एक दिन भी आपका काम कर दे तो आप इतने थैंकफुल होते हैं। अमूमन ऐसा होता है, लोग रिश्तेदारों से खुश नहीं होते लेकिन दोस्तों से खुश होते हैं, वो थोड़ा भी कर दें तो बहुत खुश हैं। और कोई रिश्तेदार है, को अपना भाई बहन माँ बाप या ससुराल में कोई, वो कितना भी क्यों ना आपका काम कर दे, आपको ले दे ले, आप खुश नहीं होते। इसकी वजह क्या है? एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें होती है ना। ये भाई है ना, आप देखना ये तो बस मेरे लिए ये करेगा, इसको तो करना, ये भाई है देखना ये तो मेरे लिए बस, मुझे मैं आऊंगी ना तो ये अपनी गाड़ी मेरे आगे रख देगा कि बहन तुम्हें जिधर जाना चलो। अच्छा जी, ये भाई है ना, आप देखना ये भाभी है बस, ये तो अब सारा दिन मेरे ही पीछे रहेंगी। अब जब आप आए, हो सकता है उस भाई की अपॉइंटमेंट हो, वो बीच में 2-3 घंटे आपको गाड़ी ना दे जब आपको शॉपिंग करने जाना है, देखा बस बदल गए, शादी से पहले अच्छे थे, अब तो पता नहीं भाभी ने क्या कर दिया। क्या चीज़ हुआ? आपकी उम्मीद बहुत थी, इसके बरक्स आप कहीं गए आपको उम्मीद ही नहीं थी। कोई बंदा आपको पहली दफ़ा मिलता है, आपको मिलता है, कहते अच्छा देखिए आप यहाँ आए, आपको कोई भी मदद चाहिए ना हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा आपको वहाँ की ज़रूरत पड़ती है? आप कहते अच्छा चले ठीक है। अब वो 1 घंटे के लिए अगर आपको गाड़ी देगा ना तो आप कहेंगे माशाल्लाह ऐसे वक्त में काम आए। फ़र्क किस बात का है? रिश्तेदारों में उम्मीदें होती हैं और गैरों से उम्मीद नहीं होती। गैर थोड़ा भी करता है तो हम खुश हैं, अपना बहुत भी कर देना तो जो थोड़ा सा नहीं करता उस पर रोते हैं। इसका इलाज क्या? खुश रहने का। उम्मीद छोड़ दें, आप कहीं जा रहे हैं, कहते देखना ये तो खाना खिला के भेजेंगी, चले अब वो खाना खिलाने की आप नियत करके गए थे, वहां जाके आपने देखा तो उन्होंने तो चाय के साथ 4-10 चीजें रख दी, खाना नहीं पूछा, कहेंगे देखा खाने का वक्त था चाय पे टरखा दिया। ऐसा है, और बाज माशाल्लाह ऐसे भी लोग हैं जो घर से ही बच्चों को कह के जाते हैं बेटा वहां जाएंगे तो खाना खाएंगे, और बच्चे तो जाते ही बोल देते हैं आंटी मम्मी कह रही थी हम खाना खा के आएंगे। हाँ उम्मीद बांधना छोड़ दे। यकीन करें जिसने अपनी उम्मीदें रब से बांध ली ना वो कभी धोखा नहीं खाएगा। एक अल्लाह की ज़ात है जो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरता है। वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। किसी जगह दीन की बात कोई क्लास की थी कुछ थी, और ये एक मुसलमा हकीकत है, मैंने कई जगह आजमाई है कि जिन लोगों की उम्मीद पे आप कोई काम शुरू करते हैं ना वो तो नहीं आते, वो तो फ़ायदा नहीं देते या वो आपकी मदद नहीं करते। हाँ दूसरे बहुत लोग करते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो यही अल्लाह ताला हमें सिखाता है, हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर अल्लाह ताला ये सबक सिखा देता है कि तुम सारी उम्मीदें मुझसे बांधो। आप खुश रहना चाहते हैं ना, आप लोगों से उम्मीदें छोड़ दें। यकीन करें अपनी माँ अपने बच्चों से तो उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। देखिए ये ज्यादती है, आप उठते बैठते उसको ये ताना देते हैं ना तुमसे तो मुझे ये उम्मीद है, तुम तो बड़े होके ये पूछोगे, तुम। अब वो बच्चे लाशौरी तौर पे सोचेंगे दैट मीन दिस इज अ बिजनेस, आज इस माँ ने मुझे पाला, इसने हिफाजत की, खिलाया पिलाया, कल उम्मीद लगाया हुआ कि मैं ये बूढ़ी होगी तो मैं हिफाजत करूंगी। कभी इस नीयत से बच्चे ना पालें, अल्लाह की जिम्मेदारी समझें, कभी इस उम्मीद पे ना रखे कि हम कल बूढ़े होंगे तो ये हमें पानी पिलाएंगे, ये हमें खिलाएंगे, सहारा बनेंगे। नहीं अल्लाह उम्मीद तुझसे है, तू कोई सहारा बना दे, बच्चा नहीं करता तो कोई दूसरा कर देगा, बाद औलाद नहीं करती, या अल्लाह ना करे अल्लाह ताला अचानक उम्मीदों को तोड़ता है। बाद दफ़ा आप देखिए कि अल्लाह ताला नेमत दे के छीन लेता है, आप कहते हैं मेरी तो सारी उम्मीदें टूट गई। भाई आपने क्यों लगाई थी? आप उस ज़ात के साथ लगाइए जो बाकी रहने वाली है, जो किसी लम्हे में इंसान का साथ नहीं छोड़ती। और मैं इसको महसूस करती हूँ कि ये खुश रहने का राज है। बस एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं आते ना तो लोग परेशान होते हैं, फिर आप उसको कैसे फील करते हैं कि देखें जो इसने किया क्या आप उसके लिए उतना भी कर सकते हैं, आप तो नहीं करने वाले थे। तो आपने अगर किसी से 100 की उम्मीद लगाई थी, अगर उसने 70% कर दिया तो फिर भी उसने आपसे ज़्यादा किया ना, तो यकीन करें एकदम मोरल डाउन होता है। और अमूमन देखें जो बहन भाइयों की और रिश्तेदारों में आपस में जो गॉसिप होती है ना वो इसी तरह की होती है, बहनें मिलती हैं तो किसी भाई के बारे में ऐसी बात कर देंगी। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि ससुराल में जब मामला होता है उसमें भी यही होता है, सास पहले से इंतज़ार करी है कि बहू आएगी तो माशाल्लाह सारे घर का काम ये करेगी, संभाल लेगी घर। अच्छा घर नहीं संभालने देंगी बहुएं कि सास के ये घर ही संभाल लें, हाँ काम वो सारा करेगी लेकिन नहीं, अपनी बेटी सो रही है बहू से उम्मीद है कि सुबह 7 बजे आके चाय की प्याली हमें दे, अब वो बेचारी 7 की बजाय अगर 7:15 कमरे से निकलेगी ना, तो सास कहेगी देखो मेरी तो उम्मीदों पे पानी फैल गया, क्या फायदा बेटे की शादी का अगर उठ के चाय भी खुद बनानी पड़ी। नुकसान कहाँ है, गलती क्या है, उम्मीद क्यों बांधी आपके, ये कुछ नहीं करेगी, ये 9 बजे उठेगी। तो फिर आप देखें अगर वो 8 बजे भी उठ के आएगी ना, तो आप दिल से खुश होंगे कि ये 1 घंटा पहले उठ गई। खुश रहने का राज है कि उम्मीदें छोड़ दें। बस मियाँ मेरे, ये तो मेरे आगे पीछे फिरेंगे, कोई नहीं फिरेंगे, कुछ नहीं, मुझे पूछेंगे भी नहीं। आप यकीन करें, आप ऐसा सोच के देखें, फिर आप देखेंगे कि उसके नतीजे में आपको कितनी खुशी मिलती है। इसके बाद 8वां दरवाज़ा, जिसे शैतान इंसान के साथ यानी ऐसा मामला करता है कि जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, वो क्या है, उजलत, हेस्टीनेस, जल्दबाजी। जब इंसान को किसी, कुछ इंसानों की तबीयत में उजलत होती है, इस्लाम हमें क्या कहता है, फफिर्रु इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ। क्या कहता है, साबिकु इलल मग़फिरती, बख्शिश की तरफ भागो, भागो वो पसंदीदा है, अल्लाह की तरफ भागना, साबिकून अलवलून पसंदीदा है, लेकिन उजलत पसंद नहीं है, पसंदीदा नहीं। कुरान पाक में सूरह तौहा में आता है, कुछ लोग जो है वो युहिब्बून अल आजिला, वो आजिला को पसंद करते हैं। और आजिला क्या, ये दुनिया, सब कुछ अभी मिल जाए, आखिरत का इंतज़ार नहीं करते। आखिरा की बजाय, आखिरा का ऑपोजिट होता है आजिला, यानी आखिरत में कुछ लेने के बजाय क्या चाहते हैं, आज ही मिल जाए। और हमारे यहाँ इस पर एक छोटी सी कहावत बनी हुई है ना, कि सोने के अंडे, मुर्गी ने अंडा दिया तो कहा सारे ही अंडे इकट्ठे ले लूँ, इसका पेट फाड़ू, मुर्गी भी मर गई, अंडे भी ख़त्म। अब पता नहीं वो कौन सी मुर्गी थी जिसने सोने के अंडे दिए थे, लेकिन आजिला होगी ना। तबीयत में जब जल्दी होती है ना, तो समझ लें कि उसके सही काम भी ठीक नहीं होंगे। सूरत अंबिया की आयत 37 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुलिक अल इंसान मिन अजल, इंसान उजलत में पैदा किया गया। इस पे रिवायात में तफसीर में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह डाली गई, अभी रूह आधे बदन में ही आई थी तो उठ के बैठने लगे। तो उस पे भी यानी एक ये कहा बात तफसीर में हमें मिलती है कि इंसान की तबीयत में जल्दबाजी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल आजिला तू मिन शैतान, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। अच्छा, अब जल्दबाजी का ये नहीं मतलब कि बंदा सुस्त हो जाए। हम कहते हैं जल्दी तो करनी नहीं है, इसलिए अब सुस्ती के मारे उठो नमाज के लिए, इसलिए कि जल्दी नहीं करनी, ये मतलब नहीं है। जल्दी का मतलब ये है कि सब कुछ अभी लेने की ख्वाहिश या हेस्टीनेस। मसलन आप देखिए कि आप तसव्वुर में लाएं ज़रा कि आपको गुस्सा कब ज़्यादा आता है, कोई बताएगा? आप कहीं जाने वाले थे, बच्चे निकलने में देर कर रहे हैं, ऐसा है? आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, गुस्सा क्यों आ रहा है? ट्रैफिक में स्टक हैं, किस बात पे गुस्सा है? क्या आप जल्दबाजी में है ना? खाना गरम गरम मुंह में डाला, जुबान जल गई, बेगम से कहा एक तो खाना बहुत गरम पकाती हैं आप। हाँ, आजिला हर जगह बंदे को शर्मिंदा करती है। अपनी तबीयत में ठहराव पैदा करें। यकीन करें, जो लोग उजलत पसंद होते हैं ना, किसी लिहाज से अच्छा भी होता है, लेकिन वो लोग कभी कंफर्टेबल नहीं होते, ना खुद खुश रहते हैं ना उनके साथ वाले खुश होते हैं। इंसान अपनी तबीयत को ऐसे महसूस कराए जैसे स्नो, ठंडक। आपको दूसरों को आपकी वजह से ठंडक महसूस हो, ये नहीं कि आप हर वक्त परेशान रहें और परेशान रखें जिसकी वजह से आपका काम भी ना हो। यानी तबीयत में ना ठहराव पैदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी के पास एक दफ़ा एक ग्रुप आया, तो सब लोग सफ़र से थके हारे थे, और जूं ही अल्लाह के नबी को देखा, जल्दी से भागे आए, मोहब्बत में गए। अब पसीने की बू हो सकती है, गर्मी थी, मिट्टी थी, लेकिन एक सहाबी थे, जो एक साथी जो थे वो उतरे, पहले शावर लिया, अपने आप को साफ़ सुथरा किया, कंघी की, फिर बड़े वक़ार से चलते हुए आए। तो आपने उनको देख के कहा कि इन नफ़ी कल खसलतें, ए अशजो, तेरे अंदर दो खसलतें हैं जो रब को बड़ी पसंद है। क्या? अल हिल्मु वल इना, हिल्म तहम्मुल, और इना आजजी, मतानत, ठहराओ। देखिए कि जितना आपकी तबीयत में ठहराव आएगा ना, आप उतने ज़्यादा लोगों के लिए खुशी का बायस होंगे। जो बंदा आजिला में होता है ना, वो हर वक्त टेंस में, टेंशन का शिकार है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। वो हर वक्त कहेगा ओके गुड ओके, यानी हुक्म देने वाला अंदाज होगा, और नतीजा क्या है, आप जल्दी में खाना पकाएं आधा गिरेगा, ऐसा है ना? जब आप जल्दी में काम करते हैं आपका हाथ जलता है, और जो जितना जल्दी में करते हैं ना उतना ही ख़राब होता है काम। कभी आप जल्दी में वो एक तरफ से किया, भागो भागो भागो, तो वो दूसरी तरफ से ख़राब हो गया। और वो एक बात भी आपने सुनी होगी ना, कि वो जो मेहमान घर में आए और सिर्फ दाल ही थी, हाँ, तो कहा कि अच्छा मेहमान को कह मैं कवास दूंगा, तुम कुछ गिराना, तो वो मैं पूछूंगा बेगम क्या हुआ, तो आप कहना कि मुर्गी का सालन गिर गया, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं बेगम दाल ही ले आओ। अब देखिए झूठा तसव्वुर है ना कि भाई हमारे पास मुर्गी थी, कहा ठीक है। और वही बात हुई जब मेहमान बैठे तो अंदर से पतीली गिरने की आवाज आई, तो कहा भी बेगम क्या हुआ, कहने लगी दाल ही गिर गई, यानी दाल भी नहीं रही। तो कभी दाल कब गिरती है, जब आजिला का शिकार होते हैं, कुछ नहीं होगा, 1-2 मिनट से कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट ज्यादा कब होते हैं, आप साइन कब ब्रेक करते हैं, आप स्टॉप साइन से क्यों भागते हैं, आप रेड लाइट पे क्यों भागना चाहते हैं। कभी मैं किसी को इस चीज का शिकार देखूं, नमाज के लिए भागना या जल्दी, तो मैं कहती हूँ देखिए कितना को फर्क पड़ेगा, आप अगर 60 की बजाय 65 चला रहे हैं, या आपको जल्दी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, सुकून से बैठे, पहले ही वक्त पे निकले इंसान। जब पहले देर होती है फिर बाद में कहते नहीं रास्ते में फंस गए थे, ये नहीं बताते निकले कब थे, ये कह देंगे कि रास्ते में फंस गए थे। तो लिहाजा तबीयत में ठहराव पैदा करें, इसलिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान क्वालिटी का काम करे। देखिए इसकी वजह आप सोच सकते हैं ऐसा क्या है, क्योंकि देखिए जो खाना आप तेज़ आंच पे पकाते हैं वो कैसा होता है, अच्छा पकता है, रोटी तेज़ आंच पे पकाएं अंदर से कच्ची रह जाएगी। आप ओवन में कोई चीज़ बेक कर रहे हैं, आप 350 की बजाय 450 या 500 पे लगाएं, 5 मिनट में पक जाएगी, लेकिन जब वो अंदर से खाएंगे तो कच्चा। जो समोसे फ्राई करते हैं लोग, जो फ्रीज़र के निकाल के तेज़ आंच पे करते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा क्वालिटी का काम करे, इसलिए अपनी तबीयत में एक थोड़ी सी सहूलत पैदा करनी चाहिए ताकि दूसरे भी हमारे साथ कंफर्टेबल रहें। नवा दरवाज़ा जो है वो क्या है, माल और दौलत की मोहब्बत, यानी माल और दौलत की मोहब्बत। पहली बात है कि माल और दौलत रखना कोई बुरी बात नहीं, दूसरी बात है इनसे मोहब्बत करना भी कोई बुरी बात नहीं, ये तो अल्लाह ने दिल में डाली। زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، پوری لسٹ گنوائی اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں۔ منع کیا ہے کہ اس محبت کو اللہ کی محبت کے راستے کی رکاوٹ بنا لیا جائے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو اس دل میں مال کی محبت ہو، اور اس مال کو حاصل کرنے یا اس کو استعمال کرنے میں اللہ کے قانون ٹوٹے، نمازوں کا وقت ہے تو ہوتا رہے، ہم مال کی محبت کا شکار ہیں، اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال متقی انسان کو نقصان نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس مال کو پانے کے باوجود بھی اللہ کے آگے رہتا ہے، اور اگر نعمتیں بڑھتی جائیں اور نمازیں کم ہوتی جائیں تو یہ ایک پکڑ ہوگی۔ اگر پہلے جماعت کی نماز تھی، اب وہ نماز محروم ہو گئی، جماعت سے الگ پڑھنے لگے اس لیے کہ جی اب وقت ہی نہیں ملتا، تو یہ چیز انسان کے لیے فتنہ بنتا ہے۔ اگلی چیز، 10ویں چیز جو ہے وہ کیا ہے، فقر کا خوف، کہ میں فقیر ہو جاؤں گا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ شیطان انسان کو اس چیز کا وعدہ دیتا ہے، کیا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ فحش کاموں کا، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ جو ہی انسان اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، کچھ مال یا اپنی سکلز لگانا چاہتا ہے، تو شیطان دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ نہیں نہیں خرچ کر دیا تو تم تو فقیر ہو جاؤ گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا۔ کبھی کوئی بندہ اس چیز کا خیال دل میں نہ لائے کہ اگر میں خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں تو میں فقیر ہو جاؤں گا، کمی ہو جائے گی، کیونکہ اس فقر کا سارا تعلق ہی کب ہوتا ہے، جب اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ بچوں کی شادیوں پہ ہم 20-20 ہزار خرچ کریں، ہمیں کبھی خیال نہیں آتا فقیر ہو جائیں گے۔ ہم اپنی ذات پہ لگائیں، گھر پہ لگائیں، کوئی خوف نہیں ہے، جو ہی اللہ کے راستے میں ذرا تھوڑا سا دینا پڑے تو شیطان کہتا ہے نہیں دیکھو تم اتنا دے دو گے پھر کیا بنے گا، پھر اتنی زکوٰۃ، پھر وہ ایسی باتیں کہلواتا ہے، اچھا سونے پہ زکوٰۃ ہے تو بیچ میں کھوٹ بھی تو ہوتا ہے، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دوں، اچھا سٹونز کا بھی تو وزن ہے پھر اس پہ بھی زکوٰۃ دوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان سے شیطان کرواتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ اللہ کے راستے سے دور ہونے لگتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 268 میں آتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا ورنہ فقیر ہو جاؤ گے۔ اسی سے 11واں دروازہ کھلتا ہے اور وہ ہے بخل، سٹنجینس۔ بخل کیا ہوتا ہے کہ انسان ضروریات زندگی پہ بھی نہ لگائے، جن کا خرچ مال اس کے ذمے ہے اس کو بھی خرچ نہ کرے اور جمع کرے، फर्क है थोड़ा सा इसमें और उसमें, यानी बाज लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन जरूरत पे भी नहीं लगाते। तो बुखल जो होता है ना, ये जमा करने पे माल के लगाता है, इंसान की रग़बत दिलाता है कि माल को जमा करो। सूरह तौबा की आयत 34 में आता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिद्दता वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबशिरहुम बी अज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोने चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि वो माल जिस पे ज़कात ना दी जाए वो कंज़ है। और ऐसे माल के बारे में हदीस में आता है कि क़यामत के दिन ऐसा माल जो है गंजे सांप की सूरत में आएगा और उस इंसान की गर्दन के अंदर तौक बना के पहनाया जाएगा और उसके जबड़े खोल के उसको डसेगा और कहेगा, अना कंजुक अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा कंज हूँ मैं तेरा माल हूँ। ये सही बुखारी की रिवायत 1403 नंबर है। तो लिहाजा जो माल जमा करना और ख़ास तौर पे वहाँ खर्च करना जहाँ पे इंसान अल्लाह के दीन को ज़रूरत हो और अपने जमा करने के लिए रखे, तो वो कल क़यामत के दिन उसके लिए एक वबाल होगा, और ख़ास तौर पे जिस पे ज़कात ना दी जाए। इसी तरह 12वां दरवाज़ा जिससे शैतान किसी के दिल के अंदर दाखिल होता है वो है मजहबी तासुब, मजहबी असबियत, तासुब, मेरा जमात, मेरा गिरोह, मेरा फ़िरका, मेरा मसलक। आज ये मसला मेरा ख्याल है कि कुछ कहने के बगैर ही आपको समझ में आ सकता है। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, हम अल्लाह के दीन का काम करने के लिए मजबूर हैं। क्यों? कि आपका मसलक हमसे नहीं मिलता, आपकी जमात हमसे नहीं मिलती, आपका गिरोह हमसे नहीं मिलता। लिहाजा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे इंसान फिर अल्लाह को जवाब देगा। मैं तो यही सोचती हूँ कि कुछ जगहें जो अल्लाह के नाम पे बनती हैं और वहाँ अब अल्लाह का काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप उनकी जमात से नहीं या आप उनके मसलक से नहीं। नतीजा क्या होगा कि फिर वहाँ मस्जिदें वीरान हैं, बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं लेकिन लोग नहीं हैं, और उसकी वजह मजहबी तासुब है। मैं सोचती हूँ कि लोग नॉन मुस्लिम के साथ ज़्यादा अच्छी तरह मिलते हैं और मुसलमानों से बुगज़ रखते हैं। क्यों? ये हमारे मसलक का नहीं, ये हमारी जमात का नहीं। हमारा अक्सर ताल्लुक़ रहता है दरसों तदरीस से, डिफरेंट शहरों में जाते हैं, तो साथ ही बड़े शौक़ और मोहब्बत से शुरू करते हैं बात। आज सुबह मेरी किसी और जगह बात हो रही थी, 2-3 दिन पहले जब कुछ उनसे बात हुई तो उनके एक्साइटमेंट और ख़ुशी, और वो था जब लोग को ऐसा प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छा आप आएँ हम कुछ करेंगे, बस फलां क्लास हो रही है हम वहाँ जाएंगे, देखिएगा ये हो जाएगा वो होगा। मैं उस वक्त भी दिल में हंस रही होती हूँ कि आज ये जो चहचहा रही है ना, ये 2-3 दिन बाद जब फ़ोन करेंगी तो इनका क्या हाल होगा। एग्जैक्टली वही होता है। क्या हुआ? अरे वो ये हुआ, मुझे तो उम्मीद नहीं थी उन्होंने ये कह दिया। वो तो कह रहे नहीं 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 हम कर रहे हैं, तो और की ज़रूरत क्या है, जब पहले काम हो रहा है तो कोई दूसरा क्यों आए। अल्लाह अकबर, यानी वो कहानी जो मेरे साथ तो हर महीने में 2-3 दफ़ा दोहराई जाती है और अब मैं इसको इंजॉय करती हूँ, लेकिन हकीकत में तकलीफ़ की बात है जब नाम और गिरोह और जमातें हमें अल्लाह के दीन के काम से भी ज़्यादा प्यारी हो जाएं। तो याद रखिए कि अल्लाह मुसलमानों से वो काम नहीं करवाता जो गैर मुसलमों से कराता है। हमारे ऐसे कोर्सेज चलते हैं और मैं हैरान होती हूँ कि जब कोई मुस्लिम अपने दरवाजे बंद कर देता है तो हमारे ऊपर नॉन मुस्लिम्स के दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी चंद कुछ अर्सा पहले चर्च तक में दर्स दिया, अभी भी हम कहीं कुछ प्लान कर रहे हैं और बहुत ख्वाहिश कि किसी ऐसी अच्छी जगह पे हो, वो ख्वाहिश तो नहीं पूरी हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छी जगह हमें एक नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने फ्री ऑफ एनी कॉस्ट हमें हायर कर दे दी कि आप उसको ले लीजिए। ये क्या है? वमई अरतद मिन कुमन दीन ही, सूरह माईदा में अल्लाह ताला कहते हैं तुम में से जो अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए, अल्लाह को परवाह नहीं, अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा कि फिर वो तुम जैसे ना होंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। इसके बाद शैतान के दिल में दाखिल होने का जो अगला दरवाज़ा है वो है बदगुमानी, लोगों से बदगुमान करना। पहले तो मैं अपने लिए दुआ करूंगी कि अगर जो बात मैंने अभी कही मेरे दिल में किसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बदगुमानी नहीं आती, और फिर भी इंसान होने के नाते इस तरह आ जाए कि जैसे भी हमने बात की कि कोई अपनी जगह फ़र्क नहीं करता या आता नहीं, तो ये भी मुझे लगता है कि लोग सिर्फ नहीं मालूम उस चीज़ की अहमियत तभी ऐसा करते हैं। वरना मेरा ख्याल है कि अगर किसी को सच पता चल जाए कि हमारे थोड़े से तामुन से नेकी फैल सकती है या कल जन्नत में हमारे लिए सुरखरू होने का बायस होगी, तो वाकई इंसान कभी भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें। लेकिन शैतान इंसान को दूसरों से बदगुमान करा के अपना रास्ता आसान कर लेता है। सूरह हुजरात की आयत 12 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, ऐ ईमान वालों, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि बहुत सारे गुमान जो हैं वो झूठ होते हैं, गलत होते हैं। और आप देखें कि जितना हमें किसी से बदगुमानियाँ होती हैं, उतना हमारा रवैया उससे बदलता है, खिंचने लगते हैं, फिर उतना उससे कीना और बुग़ज़ फैलता है। और बदगुमानी वो बीज है जिस पे हसद का पौधा लगता है। आप जिससे बदगुमान होंगे ना, उसी से आप हसद करेंगे। आजमा के देख लें, माँ अपने बच्चे की चीज़ को देख के खुश होती है ना, या माँ अपनी बेटी की चीज़ को देख के खुश हो रही है उसकी नेमत को देख के, क्योंकि वो उसके लिए खुशगुमान है। और वही चीज़ अगर बहू के पास हो तो उससे माँ बाज़ दफ़ा खिंचने भी लगती है। फ़र्क किस बात का है कि जिसके लिए आप जैसा सोचेंगे बिल्कुल आपको वो वैसे ही लगेगा। तो बात सारी का खुलासा क्या है कि छोटा सा दिल है और दरवाजे बहुत सारे हैं। अगर चाहते हैं कि शैतान हमारे दिल में ना दाखिल हो, तो फिर उसका नतीजा क्या है, तरीका क्या है कि अपने आप को महफूज रखें, दिल के दरवाजे बंद करके रखें, ताकि शैतान इनके रास्ते से गुजर के हमारी टूटी फूटी कमज़ोर सी बिखरी हुई नेकियों और कोशिशों को ज़ाया ना कर दे। वक्त पूरा हो चुका है, नमाज का वक्त करीब है, इसलिए मैं यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा एंड पे डिस्क्रिप्शन नहीं दी, लेकिन आपको एक सोचने की का पॉइंट मिल गया। अगर ये 14 पॉइंट्स आप बना के अपने पास एक चेकलिस्ट की सूरत में रख लें, और ये 14 हो गए, मैं दोहरा देती हूँ, अगर कोई छूटा है तो आप लोग उसको चेक करें। सबसे पहला था गुस्सा, शहवत, हिरस, पेट भरकर खाना, हसद, ज़ाहरी ज़ेबो ज़ीनत यानी उसकी नुमाइश, लोगों से उम्मीद बांधना, उजलत, माल और दौलत की मोहब्बत, फ़क्र का खौफ, बुखल, तासुब यानी मजहबी असबियत। हाँ, एक मैंने स्किप किया, फ़लसफियाना बहसें, फ़लसफे वाली बहसें, यानी ऐसी बहसें छेड़ दो दीन के नाम पे कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं असल दीन से। यानी मैंने एक जगह देखा कि खुतबा हुआ, तो बहुत अच्छा खुतबा था, उन्होंने थोड़ा दुनिया की मोहब्बत और इस चीज़ पे बात की, तो एंड नमाज के बाद मैंने फिर एक मर्द जो बड़े ज़ोर और शोर से बातें कर रहे थे और यानी अगेंस्ट बात कर रहे थे कि इस तरह करने की क्या ज़रूरत थी ऐसी, और इतना फलसफा, यानी पूरी बातों में अलामा इकबाल की नज़में तक सुना रहे थे दूसरों को। नतीजा क्या है कि ये देखें ऐसे लोग हैं और दिस एंड दैट। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कि इतनी अच्छी बात में इनको ये मिला, यानी बाकायदा तनकीद हो रही थी ना उसके ऊपर कि इतने एक्सट्रीम पे जाने की क्या ज़रूरत है। और वो बेचारे जिन्होंने खुतबा दिया वो बिल्कुल दुनिया की मोहब्बत पे था, दुनिया और आखिरत का तकाबुल, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका ताल्लुक कोई किसी ऐसे मामले से हो। तो बहरहाल फलसफियाना किस्म की बहसें करना जिससे दीन लोगों को एक अजीबो गरीब सी चीज़ दिखे और अपने काम भी करते रहें, दुनिया की ख्वाहिशात भी पूरी करते रहें और दीन के नाम पे थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल किस्म की बहसें कर दें, इस तरीके से भी शैतान बहुत सारे लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक देता है। कोई सवाल अगर है, कोई बात अगर करना चाहें या पूछना चाहें तो 1-2 मिनट ले लें। नमाज में कितना टाइम है जी? अच्छा जी, ऑनलाइन पे टेक्स्ट खोल दें, अगर किसी को सुनते हुए कोई सवाल जहन में आया है या कोई अगर आप शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम जी। जी सुर हुजरात, शायद 12 नंबर आयत होगी सुर हुजरात की। बाकी आप सबको तो ऑनलाइन क्लासेस का मेरे लिए पता ही, आप में से तो कोई नया नहीं है ना इधर, आपको कुछ नहीं पता पेल टॉक का या ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं। हाँ, वेबसाइट हमारे पास जो है वो नूरुल कुरान के नाम पे, NURULQURAN,